दिनभर तारीख 8 जनवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं विनीत खरे। जहां जम्मू कश्मीर को नए मुख्यमंत्री का इंतजार, तो दूसरी ओर गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री ने कहा इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के लिए बनी समिति के सामने कई विकल्प।
कमेटी में अवल तो रिफॉर्म्स हैं जीवी के अंदर, ठीक है ना, रेवोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोगों को पावर करना है और उसमें कई ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है।
चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चवन लाई की 40वीं पुण्यतिथि पर सुनिएगा आज की विवेचना।
उसके बराबर दुनिया में 20वीं सदी में कोई डिप्लोमेट नहीं हुआ। करिश्मा तो था ही करूंगा, उनका पब्लिक रिलेशंस और कूटनीति में जो उनकी समझ थी और किसी में नहीं थी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वैभव श्रीवास्तव से। महबूबा मुफ्ती भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। 56 साल की महबूबा मुफ्ती शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया था। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के विकल्पों पर एक समिति काम कर रही है। गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफीजुर रहमान ने बीबीसी हिंदी सेवा को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति कुछ दिनों में अपनी सिफारिशें पाकिस्तान सरकार को भेजेगी। भारत पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों के प्रमुख ने यमन सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रतिनिधि को निष्कासित करने का फैसला गलत और नुकसानदायक है। मानव अधिकार प्रमुख के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल ने कहा, हमारा काम है हर तरह के उल्लंघन पर नजर रखना, चाहे वो कोई भी करे। ऐसा प्रतीत होता है कि यमन सरकार को ये नापसंद है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हूथी विद्रोहियों की बात पर ध्यान देते रहें। ये हमारा फर्ज है कि हम जो भी गलत हो रहा है जितना हो सके उसे रोकें। मानवाधिकार प्रमुख के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में एक इस्लामिक स्टेट चरमपंथी ने सरेआम अपनी मां की हत्या कर दी है। उसकी मां ने उसे ये संगठन छोड़ने को कहा था। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और रक्का इज बीइंग स्लॉटर्ड साइलेंटली संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की जानकारी दी है। इस महिला के बेटे ने उसकी हत्या उसी पोस्ट ऑफिस के पास की जहां वे काम करती थीं। बेल्जियम प्राधिकरण ने कहा कि ब्रुसेल्स में उनके द्वारा किए गए एक छापे में बम बनाने का सामान और पेरिस चरमपंथी हमलों के संदिग्ध की उंगलियों के निशान मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये निशान सलाह अब्देले सलाम के हैं, जो अब भी फरार है। अधिकारियों ने कहा कि ये छापे के दौरान 3 हाथ से बनी हुई आत्मघाती बेल्ट भी बरामद हुई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। आज शुरुआत कश्मीर से, जहां भारत प्रशासित कश्मीर में नई मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी हलचल है। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री की शपथ को लेकर डेडलॉक बना हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 4 दिन के शोक के बाद ही वो शपथ लेंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन्हें औपचारिक तौर पर समर्थन का पत्र नहीं मिला है। उधर कुछ राजनीतिक विश्लेषक आशंका जता रहे हैं कि राज्य में गवर्नर राज लागू हो सकता है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
कल मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के तुरंत बाद ही सत्तारूढ़ी पीडीपी के कुछ सीनियर नेताओं ने गवर्नर को एक औपचारिक पत्र पेश किया था, जिसमें मुफ्ती की सुपुत्री महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री का पद लेने पर पार्टी के समर्थन की पुष्टि थी। इस बीच बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक भी श्रीनगर में हुई, लेकिन पार्टी का कहना है कि आखिरी निर्णय दिल्ली में पार्टी की हाईकमान को ही लेना है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 4 दिन के शोक के बाद ही वो शपथ लेने या न लेने का निर्णय लेंगी। लेकिन सरकार चलाने संबंधी कई वर्गों को शंका है कि मुख्यमंत्री का पद खाली रहने के कारण में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। संविधान के विश्लेषक, लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री मुजफ्फर बेग कहते हैं कि महबूबा के शपथ लेने का निर्णय आसान नहीं है, इसलिए इसमें कुछ दिन और लगेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में संवैधानिक संकट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के न होते गवर्नर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
गवर्नर रूल 2 किस्म का होता है। एक, जब रियासत की हुकूमत कानून के मुताबिक चली ना जा सके, वो 6 महीने के लिए भी होता है, प्रेसिडेंट का रूल 2 साल के भी होता है। दूसरा गवर्नर रूल होता है कि जब तक नए आदमी को ओथ लेनी हो, उसको गवर्नर रूल नहीं कहा जाता है, गवर्नर केयर टेकर होता है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि गवर्नर कुछ दिनों का गवर्नर रूल नहीं होगा, गवर्नर केयर टेकर होंगे।
हालांकि बीजेपी के नेता राम माधव पीडीपी नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक महबूबा मुफ्ती को समर्थन देने संबंधी कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की है। मुजफ्फर बेग का दावा है कि बीजेपी को महबूबा के चीफ मिनिस्टर बनने में कोई आपत्ति नहीं है।
इसको बीजेपी की भी हमायत होनी चाहिए, तो जब ये लेटर उनके पास जाएगा, स्वेयरिंग इन हो जाएगी, मेरा ख्याल है कुछ दिन लगेंगे इसमें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं बीजेपी में पुराने वक्त, तो पुराने जमाने दोस्तों से जो मुझे पता चला है, उन्हें एतराज नहीं है।
गौरतलब है कि 56 वर्षीय महबूबा मुफ्ती इस वक्त लोकसभा में दक्षिणी कश्मीर की सांसद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो इन्हें पार्लियामेंट की सीट को त्याग देना होगा। राज्य में पहली बार बीजेपी किसी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी के पास 28 सीटें हैं, जबकि बीजेपी का कब्जा 25 सीटों पर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
उधर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफिजुर रहमान ने BBC हिंदी से बातचीत में कहा है कि इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के विकल्पों पर एक समिति काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट जल्द आएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। दरअसल पाकिस्तान से खबरें आई थी कि पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान इलाके को संविधान में जगह देने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो विश्लेषकों के मुताबिक ये कश्मीर पर पाकिस्तान के आधिकारिक स्टैंड में ऐतिहासिक बदलाव होगा। उधर सरकार का कहना है कि वो कई विकल्पों पर विचार कर रही है। मैंने गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफिजुर रहमान से पूछा कि क्या ये रिपोर्टें कि पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान को संविधान में जगह देने की तैयारी कर रहा है सही है?
देखिए, अभी तो मैं खुद इस कमेटी का मेंबर हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम साहब ने एक कमेटी बनाई है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं सरदार अजीज साहब, उनकी सरबराही में, और उसकी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। लोगों की डिमांड तो यही है कि बनाया जाए
जी। लेकिन आपको उससे लगता नहीं है कि जो पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्टांस रहा है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, उस पर असर पड़ेगा?
देखें, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है, पैरेलल है, उधर यही सारी चीजें देखी जा रही हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, और उसमें डिफेंस से भी लोग मौजूद हैं, हमारी फॉरेन ऑफिस के भी लोग मौजूद हैं, और तमाम स्टेक होल्डर उसमें बैठे हैं, और उस कमेटी में अव्वल तो रिफॉर्म्स हैं GB के अंदर, ठीक है ना
जी,
और डेवोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोगों को पावर करना है, और उसमें कई ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है, अभी कोई ऐसा कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है
जी। लेकिन इस कमेटी को बनाना, ये कहा जा रहा है कि जो चीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आना है और उनकी उनकी एक सोच है कि भाई इतना सारा पैसा आ रहा है तो एक डिस्प्यूटेड इलाके में पैसा ना लगे, इस पर क्या कहेंगे आप?
ये वैसे ही मनगढ़ंत है, लोगों की अपनी कहानियां हैं। देखें, चीन की डिप्लोमेसी हमेशा आपने देखा है कि वो कभी इस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व नहीं होते, और इस वक्त हमने जब गुज़श्ते इलेक्शन लड़ा था, जून में हमारा इलेक्शन हुआ था गिलगित बल्टिस्तान में, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था ईवी का, और वजीर आजम साहब ने उस वक्त आके गिलगित में एक बहुत बड़े जलसे आम में ये अनाउंस किया था कि हम आपको रिफॉर्म्स करेंगे और सरदार जी साहब की सरवाई में कमेटी बनेगी, और ये तो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो और हमारे इलेक्शन के एजेंडा था, जिसके तहत लोगों ने हमें 2 ताई अक्षरियत दिए वहाँ पे, और उसी पे अमल दरामद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन मैं उसी सवाल पे आऊंगा सर, ये कब तक इस पर फैसला आ पाएगा, क्योंकि जो समाचार एजेंसी AFP है उसमें कोट करते कहा गया है सजादुल हक जो आपके स्पोक्स पर्सन है कि अच्छी खबर आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी।
जी इसमें 60 दिन का हमारी कमेटी को मैंडेट दिया गया था तो 12 से 13 जनवरी तक हमारी कमेटी का जो टाइम फ्रेम है वो पूरा होता है। हमने जो है रिकमेंडेशन देनी है प्राइम मिनिस्टर साहब को और आगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजीद किन किन से बात करनी है और असेंबली आप नेशनल पार्लियामेंट में लेके जाना है, कोई कंसेंसस करना है और तमाम और कौन से स्टेक होल्डर है जिनसे पूछना है वो तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेंगे। हमने अपनी कमेटी का काम तकरीबन फाइनल किया है और वो हम अपनी सिफारिशात हम प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे और उन्होंने ये कमेटी कंस्टिट्यूट की है और जब तक वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खोल के बयान नहीं कर सकते, हम अनओथ है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई बयान नहीं कर सकते।
लेकिन ऐसी खबरें आ गई हैं सर कि ये मोर और लेस ये डन चीज है,
ये यकीनी बात है कि डेवोल्यूशन होगा, मजीद जो 18वीं तरमीम कहते हैं जितने सूबों को इख्तियारात हैं वो हमें भी मिलेंगे लेकिन वो किस शक्ल में होंगे ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन बस आखिरी सवाल आपसे, ये जो पाकिस्तान का फिर स्टांस है कि डिस्प्यूटेड मामला है क्योंकि उस पर फिर रिएक्शंस आएंगे और ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि वे ये जो ट्रेडिशनल स्टांस है वो कि डिस्प्यूटेड इलाका है,
यूएनसीआईपी के रेजोल्यूशन का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, तो यूएनसीआईपी का जो मगज है वो तो यही है ना कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में जो है वो आप मर्दम राय शुमारी करवाएंगे, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो करारदादों का यही है और हम यही मुतालबा करें कि हिंदुस्तान अगर आप राय शुमारी के लिए तैयार नहीं है तो पाकिस्तान तो करवाए ना।
तो क्या आपको ये पूरा मामला उस तरीके उस तरफ जाता दिख रहा है जिसमें एक जो सोच रही है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे, जो हिंदुस्तान के पास है हिंदुस्तान के पास?
नहीं नहीं नहीं, देखिए हम समझते हैं कि अगर राय शुमारी होती है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो मसला कश्मीर इंटरनेशनली जो है फ्लश कर सकते हैं।
ये थे गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हाफिजुर रहमान। तो आखिर गिलगित बल्टिस्तान का पूरा मसला क्या है, इस्लामाबाद से मुझे बताया बीबीसी संवाददाता हारून रशीद ने।
देखें पाकिस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान जो है वो फिलहाल एक ऑटोनमस इलाका है और उसको उन्होंने अपनी एक कौंसल बनाई हुई है जिसमें एक वजीर आला है जो वहाँ पर रूल करते हैं और वो मुख्तलिफ है जो उसके साथ का इलाका है कश्मीर का जो कि डिस्प्यूटेड माना जाता है और जो पाकिस्तान अपने इलाके को आज़ाद कश्मीर कहता है वो इसके साथ मिला हुआ है। लेकिन मसला ये है कि 1846 में जब डोगरा रूल करते थे कश्मीर पूरी वैली को तो उन्होंने इसको एनेक्स किया था, गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथ मिलाया था और वो उसका निज़ाम चलाते थे। लेकिन जब तकसीम हिंद हुआ 1947 में तो उस वक्त ये अनडिसाइडेड इसका दोनों देशों के दरमियान रह गया। कश्मीर पे तो दोनों देश का मौकिफ था कि वो उनका है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इतना प्राइम उसमें नहीं आया तो उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि हिंदुस्तान का ये कहना है कि कश्मीर के साथ साथ जो पाकिस्तान के पास है गिलगित बल्तिस्तान भी उसका इलाका है और ये डिस्प्यूटेड इलाका है तो इस वजह से पाकिस्तान भी उसको सेटल नहीं कर सका, अपने आइन के अंदर नहीं ला सका क्योंकि अगर वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना पार्ट बनाता है, पांचवां सूबा बनाता है, प्रांत बनाता है तो फिर उसका जो कश्मीर केस है वो कमज़ोर होता है। तो इस वजह से इसको एक लिम्बो में रखा गया हुआ था और अब चूंकि चाइना की इतनी ह्यूज $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मामला है तो उसको इंश्योर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अब इस पे गौर कर रही है कि इसको ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर तो चलें जब रिजॉल्व होगा जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला है इसको एक स्टेप आगे लेके जाएं और आइन में इसको एक जगह दें ताकि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको गारंटी हो सके।
इस्लामाबाद से ये थे हारून रशीद।
बीबीसी इंडिया बोल।
फिल्म स्टार आमिर खान को पर्यटन विभाग के कैंपेन अतुल्य भारत से हटाया गया। मैग्सायसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया। क्या ये फैसले ठीक हैं या फिर बदले की कार्रवाई? असहिष्णुता पर बहस खत्म नहीं हुई है, इसीलिए इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की गिनती 20वीं सदी के प्रमुख विश्व नेताओं में की जाती है। माओ के साथ मिलकर उन्होंने नए चीन की नींव रखी। 1972 में अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पहली चीन यात्रा में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। चाउ इन लाई की 40वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
ये आवाज है 27 सालों तक चीन के प्रधानमंत्री या प्रीमियर रहे चाउ इन लाई की, जिन्हें उनके खूबसूरत चेहरे, वाक्पटुता और कूटनीतिक समझ के लिए न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाता है। चीन की राजनीति के कीचड़ में वो शायद अकेले शख्स हैं जो बेदाग निकलने में सफल हुए हैं। उनकी सुसंस्कृत और शालीन छवि इसलिए भी उभर कर सामने आती है क्योंकि उनकी तुलना अक्सर उनके नेता माओ ज़ेडुंग से की जाती थी, जो हमेशा अपने आप को सुर्खियों में लाने और चीन की अनवरत उथल पुथल का श्रेय लेने के लिए लालायित रहते थे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कहते हैं,
उसके बराबर दुनिया में 20वीं सदी में कोई डिप्लोमेट नहीं हुआ है। वो करिश्मा तो था ही खैर उनमें और लॉन्ग मार्च में रहे थे, मगर उनका पब्लिक रिलेशंस और कूटनीति में जो उनकी समझ थी और किसी में नहीं थी।
लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में चाउ इन लाई का राजनीतिक करियर पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं था। उनके एक जीवनीकार गाओ वेन क्विन लिखते हैं,
चाउ दीवार में एक मामूली दरार ढूंढने में निपुण थे जिससे वो लोगों को भरमा सकें कि वो अपने फैसले लेने में तटस्थ हैं। असल में वो माओ के वफादार कुत्ते की तरह हमेशा उनके पीछे चलते हैं और अपनी खाल बचाने के लिए अनर्गल प्रलाप का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। उनका राजनीतिक अस्तित्व इसलिए भी बना रहा क्योंकि उन्होंने माओ की अधीनता को बिना किसी हील हुज्जत के स्वीकार किया। वो हमेशा माओ के अभिन्न सहायक रहे, लेकिन उन्होंने उनका हमेशा तिरस्कार किया। उन्होंने कभी भी कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाया, इसलिए वो हमेशा माओ के नंबर दो बनकर रहे।
भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव और 70 के दशक में चीन में भारत के शार्डी अफेयर्स रहे लखनलाल मेहरोत्रा को 1955 में चाउ इन लाई से मिलने का मौका मिला था, जब वो एक भारतीय छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चीन गए थे।
मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। उस वक्त एक नोटिस मिला हमको कि पहला कल्चरल डेलीगेशन विद्यार्थियों और अध्यापकों का भारत से चीन जाने वाला है, जो कि उनके प्रथम अक्टूबर के पूरे समारोह में भाग लेगा। उसमें 3 व्यक्ति छांटे गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बाकी कुल मिलाकर के 10 विश्वविद्यालय थे, जिनसे एक एक प्रोफेसर और 2-2 विद्यार्थी चुने गए। जब हम चीन पहुँचे तो पीकिंग होटल में हम लोगों को रखा गया। पहले दिन जब हम लोग शाम को भोजन करने के लिए नीचे आए तो करीब 25-30 डेलीगेशन और उसी होटल में रोके गए थे। वो सब के सब खाना खाने उसी वक्त आए हुए थे। तो चाउ इन लाई आए और वो आकर के हम लोगों की मेज पे बैठ गए और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोग में से कितने वेजिटेरियन हैं। तो हमने बताया, काफ़ी लोग जो थे वो गोश्त नहीं खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को खाना संतोषजनक मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब नहीं, अभी तो ज़रा इंतज़ाम कम है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम जहाँ जहाँ भी गए उसके बाद, 3 हफ्ते रहे चीन, जगह जगह हम लोग गए और हमें सारी जगह वेजिटेरियन बड़ा बढ़िया खाना मिला। लुक एट हिज इंटरेस्ट, मतलब ये कि उनको इस बात का ख्याल था।
अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को जब परेड हुई तो उन्हें चीन के शीर्ष नेताओं के बॉक्स में ले जाया गया, जहाँ चाउ इन लाई ने उन्हें खुद माओ ज़ेडुंग से मिलवाया था।
करीब 110 से 115 डेलीगेशन आए हुए थे चीन और वो सब एक के बाद एक तियानमेन स्क्वायर में एक के आगे जा रहे थे और जो फॉरबिडन सिटी है उसके रैम्पर्ट्स पे, जो उसकी मेन आर्च है उसके ऊपर माओ ज़ेडुंग, चाउ इन लाई और सारी पोलिट ब्यूरो इकट्ठा थी और वो सैल्यूट लेते चले जा रहे थे और वेव करते चले जा रहे थे। हम लोगों का जब डेलीगेशन वहाँ से गुजरा तो उनका जो मिलिट्री वाले जो रेगुलेट कर रहे थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग अलग आ जाइए। हम लोग बिल्कुल अलग ले जाए गए, फॉरबिडन सिटी के अंदर गए, ऊपर ले जाया गया और चुएन लाई ने हमको माओजे तुंग से मिलाया और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये 1954 का जो हम लोगों का समझौता है वो बहुत उम्दा चीज़ है और हम उसका स्वागत करते हैं और ये हम दोनों देशों को हमेशा बराबर नज़दीक रखेगा।
उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया भर के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उनके मुरीद थे। मशहूर पत्रकार जैक एंडरसन ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ ए मक रेकर में लिखा था,
मेरे जहन में चाउ इनलाई की जो याद बरकरार है वो है 45 साल की उम्र में भी उनका खूबसूरत चेहरा और गजब की बुद्धिमत्ता। वो दुबले पतले जरूर थे लेकिन बेहद मेहनती भी थे। उनका जीवन बहुत सादा था लेकिन वो बहुत ही सजीले इंसान थे। उनके उठने बैठने का ढंग बहुत खुशनुमा था। अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अमरीकी विदेश विभाग के सुदूर पूर्व विशेषज्ञ वॉल्टर रॉबर्टसन ने उनके बारे में एक बार कहा था कि उनके जैसा मनमोहक, अक्लमंद और आकर्षक इंसान किसी भी प्रजाति में मिलना बहुत मुश्किल था।
1960 में चाउ इनलाई भारत आए थे। ये 1962 का युद्ध टालने की उनकी तरफ से आखिरी कोशिश थी लेकिन नेहरू से उनकी बातचीत असफल रही। नेहरू ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भारत का पक्ष रखने के लिए आपसे मुलाकात करेंगे। चाउ इनलाई ने जवाब दिया कि उन मंत्रियों से मिलने मैं खुद उनके पास जाऊंगा। उस यात्रा में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह चाउ इनलाई के लियाजा ऑफिसर थे।
जब मिलने गए थे वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन से, होम मिनिस्टर पंडित पंत से, मोरारजी देसाई से, तो उनके साथ हमें जब वो जवाहरलाल जी और चुनलाई मिल रहे थे तो कोई नहीं था। एक तो उनका इंटरप्रेटर चाइनीज़ का और एक हमारा था। पर मैंने बाद में कागज़ वागज देखे पर चुनलाई की मीटिंग मोरारजी देसाई से तो बहुत डिजास्टर था बिल्कुल। और वाइस प्रेसिडेंट से भी कोई ठीक नहीं, पंत जी से करीब करीब ठीक हो गई मगर वो ऐसी बातें थी कि एक दिन कार्टून आया जिसमें उनको चुनलाई को देखा कि वो कोबरा है, दूसरे ने आया कि साहब ये बेशर हमें हंस रहे हैं। उनने मुझसे पूछा कारण में कि ये व्हाई इज दिस हैपनिंग, दे क्रिटिसाइज, दे डू दिस टू जवाहरलाल नेहरू आल्सो, डू यू थिंक इट्स राइट थिंग टू डू। मैं क्या कहता, कुछ नहीं कहता। सो एनीवे होता ही गया, बस इट वाज डाउनहिल ऑल द वे। और उस वक्त तक द इनिशिएटिव फॉर गोइंग टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द बैक फुट। जहाँ तक मुझे लगा कि चुनलाई फैसला करने के लिए आए थे, उन्होंने ये था कि भाई अक्षय चिन्ह तो हम आपको देंगे नहीं, मैकमोहन लायम को हम नहीं क्रॉस करेंगे, मगर अब नहीं हो सकता, वो तो चुक गए।
उसी यात्रा के दौरान चीनी दूतावास से राष्ट्रपति भवन आते समय राजपथ पर चाउ इनलाई की कार खराब हो गई और उन्हें सड़क पर उतरकर दूसरी कार का इंतजार करना पड़ा।
यहाँ रात को चाइना एम्बेसी वापस आ रहे थे, एक खराब हुई फिर दूसरी भी हो गई, फिर तीसरी मंगाया। चुनलाई तो परेशान नहीं थे पर हम लोग परेशान थे। और रामजी काओ जो थे रॉ के हेड, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके साथ, तो मैं वो बैठते थे सामने की जो मैं बैठता इनके साथ चुनलाई। मैंने सोचा तो होगा कि भाई इनके बड़ा फटीचर मुल्क है, इनकी गाड़ियाँ भी नहीं चलती इतने और हम इतने लेवल पे हैं, पर दिखाया नहीं बिल्कुल।
लेकिन 1973 आते आते चाउ इनलाई का भारत के प्रति रुख या तो पूरी तरह बदल चुका था या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी थी। उस समय चीन में भारत के शार्डी अफेयर्स लखनलाल मेहरोत्रा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
भुट्टो विजिट पर आ रहे हैं, चाउ इनलाई एयरपोर्ट पर उनको लेने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे हम सब लोग रीति के अनुसार इकट्ठा हैं, जितने भी हेड्स ऑफ मिशंस थे। चाउ इनलाई गए, उन्होंने सारे इंतजाम देखे, भुट्टो 5-7 मिनट में उनका प्लेन आने वाला है और फिर वो हम सब लोगों से हाथ मिला के चाउ इनलाई प्लेन के नज़दीक पहुंच गए। वहां से वो लौट के आए पीछे की तरफ से और उन्होंने मेरे गर्दन पे और कंधे पे टैप किया और मुझसे कहा, मिस्टर शाहजेद अफेयर्स, प्लीज़ टेल इंदिरा एवरीथिंग विल बी फाइन। नाउ टू थिंग्स वेर इम्पॉर्टेंट, ही यूज द वर्ड इंदिरा, नॉट योर प्राइम मिनिस्टर। देर वॉज अ लॉट ऑफ अफेक्शन इन्वॉल्व इन दिस। He was remembering the old days when he used to meet Nehru, and Indiraji was almost always with him in such matters. हुआ ये कि उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। चाउ इनलाई ने रात को बैंकुट दिया, स्टेट बैंकुट होती है वो, बैंकुट हॉल ऑफ द पीपल में 2000 लोग आते हैं, सारे हेड्स ऑफ मिशंस होते हैं। चाउ इनलाई की तबीयत ख़राब हो गई, तंग शाओपिंग आए उनकी जगह, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बात की सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर, आई हैड टू वॉक आउट, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट हो चुका था, वो बायलैटरल मैटर था, वी डिडंट वांट एनी कंट्री टू पोक इट्स नोज इन द मैटर, एंड देयर वाज अ मैटर ऑफ कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
और ये जो फैसला था वॉकआउट करने का, ये पहले से तय था या इस पर ऑफ द मोमेंट पे आपने?
एट द मोमेंट बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये करने जा रहे हैं, लेकिन वो संभाल दिया गया। अगले दिन जब भुट्टो ने चुअन लाए के ऑनर में अपनी बैंक्वेट दी, तो देर वॉज नो यूज ऑफ द वर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, नो सच थिंग वॉज डन। ऑन द अदर हैंड, वेदर इट वॉज प्रॉम्प्टेड बाई द चाइनीज और ऑन हिज ओन, भुट्टो केम टू अस एंड सेड कि भाई आप लोग क्यों बाहर चले गए कल। मेरी वाइफ से उन्होंने कहा कि मैं तो समझा कि आप टॉयलेट जा रहे हैं दोनों के दोनों, तो उस बाई वाइफ उन्होंने जवाब दिया शीला ने कि जनाब हमारे यहाँ तो कभी दो लोग मर्द और औरत साथ जाते नहीं है टॉयलेट, एंड दिस वॉज फ्लैश ऑल ओवर। बिफोर हिज डेथ मंथ्स लेटर इन जनवरी 1976, Chu and Lai had made certain that we initial the agreement for exchange of full-fledged ambassadors. हम थे हेड ऑफ द मिशन, लेकिन शारजे द अफेयर्स कहलाते थे।
फिर नारायणन को,
फिर नारायणन साहब को भेजा गया और वो एग्रीमेंट Chu and Lai के ज़माने में साइन हुआ और मैंने उसको इनिशियल किया।
इससे पहले 1971 में अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर Chu and Lai से मिलने गुप्त रूप से बीजिंग गए थे। इस यात्रा ने किसी अमरीकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार की थी। बाद में हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा द व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा।
जब मैं चाउ से पहली बार 1971 में मिला था, तब तक उन्हें चीनी कम्युनिस्ट आंदोलन का नेता बने करीब 50 साल हो चुके थे। चाहे दर्शन हो या ऐतिहासिक विश्लेषण, राजनीतिक परख, संस्मरण या हाजिर जवाबी, सब पर उनकी बराबर की पकड़ थी। अमरीकी मामलों, तथ्यों और मेरी खुद की पृष्ठभूमि के बारे में उनकी जानकारी अद्भुत थी। वो अपना एक भी शब्द जाया नहीं करते थे और ये जाहिर करता है कि वो कितने सुलझे हुए इंसान थे।
1975 आते आते Chu and Lai गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें पेट का कैंसर हो गया। आखिरी बार वो अस्पताल से बाल कटवाने अपने नाई जू दिन हुआ के पास गए। उन्होंने जू से कहा, चलो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ, लेकिन वहां कोई फोटोग्राफर मौजूद नहीं था। 3 महीने बाद जू ने उन्हें संदेश भिजवाया, क्या मैं प्रधानमंत्री के बाल काटने आ सकता हूं? Chu and Lai ने कहा, उसको यहां मत आने दो, मुझे इस हाल में देखकर उसका दिल टूट जाएगा। 8 जनवरी 1976 को सुबह 9:25 पर Chu and Lai ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब चलते हैं आदेश कुमार गुप्त के पास खेल समाचारों के लिए।
जी विनीत, सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की, जहां ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और आंद्रिया पेतकोविच से होगा। उधर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम ने आज पर्थ में खेले गए अभ्यास मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 को 74 से करारी मात दी। 20-20 ओवर के इस मुकाबले में भारत ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 93 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद शिखर धवन के 74 और विराट कोहली के भी 74 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। तो अभ्यास मैच जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि दोनों टीमों के बीच यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को पर्थ में ही खेला जाएगा।
शुक्रिया आदेश। और मुख्य समाचारों के लिए एक बार चलते हैं फिर वैभव श्रीवास्तव के पास।
BBC समाचार। महबूबा मुफ्ती भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। 56 साल की महबूबा मुफ्ती शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के विकल्पों पर एक समिति काम कर रही है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफीजुर रहमान ने यह स्पष्ट किया है कि इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। यमन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रतिनिधि को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद यमन सरकार की कड़ी निंदा की जा रही है। सीरिया में एक इस्लामिक स्टेट चरमपंथी ने सरेआम अपनी मां की हत्या कर दी है। BBC समाचार।
शुक्रिया वैभव। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था देवशीष कुमार ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी घटना चक्र में रात 9:30 बजे।